ओम शांति। सोलह नंबर की व्यवस्था में एक श्रद्धालु को 9488 का पाठ है क्लास। रिकॉर्ड चला है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। ये नित्य के ऊपर गीत है। जब बात का बनते हैं तब बात आते हैं, उस समय की बात है। बच्चे जानते हैं बाप जब आते हैं तब ही विनाश के तूफान होते हैं। बाप आते हैं पुरानी दुनिया को खलास करने, स्थापन करने, तो अर्थ क्यों होगी। बाप आते किस लिए है, पुरानी दुखदायी दुनिया को खलास कर नई दुनिया स्थापन करने। उत्सुण दुनिया को खलास करने के लिए उत्सुण अर्थ के एक और ब्राह्मणों की सूक्ष्म संगम की दुनिया को खलास करने के लिए सूक्ष्म अर्थ के एक। अर्थ के एक क्या होती है, अर्थ कहते हैं धरणी को। धरणी अर्थात, धरणी अर्थात कन्या माता है, धरती माता कहा जाता है। तो जैसे वो स्थूल जमीन हिलती है तो महल माड़िया सब गिर जाते हैं, ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जब ये कन्या माताओं की बुजुर्ग की धरणी हिलती है तो सब बड़े बड़े संगठन टूट जाते हैं। समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा, एक तो अर्थ क्यों होगी और दूसरी तरफ सागर अर्थ के ऊपर होगी। ज्वालामुखी फटते हैं तो भूकंप आता है, धरती कंप होता है और समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा और बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी। सागर भी चैतन्य और धरणी भी चैतन्य और बरसात भी ज्ञान की, क्योंकि पहले हर काम सूक्ष्म में संपन्न होता है फिर स्थूल में संपन्न होता है। तो ऊपर से बरसात, नीचे से सागर और बीच में अर्थ के। और ये जितने भी कहर बताए उन सब का असर किसके ऊपर पड़ेगा, अर्थ के होगी तो भी अर्थ के ऊपर, धरने के ऊपर असर पड़ना है। समुद्र है बखलाएगा तो भी धरणी के ऊपर असर पड़ना है और ऊपर से बरसात होगी, पत्थरों की बरसात या ज्ञान की बरसात तो भी धरणी ही टूटेगी। परंतु ये सब तो होगा ही, गीत तो उन्होंने ऐसे ही बैठ करके बनाए, बनाने वाले तो इनका अर्थ नहीं जानते कि ये किस समय का गीत है। जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोके आंधी और क्या रोके तूफान। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो बरोबर पुरानी दुनिया का विनाश होना, पुरानेपन का विनाश होगा, पुरानी दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया की स्थापना होगी। नई दुनिया पुरानी दुनिया में फर्क क्या है? नई दुनिया किस लिए कहा गया और पुरानी क्यों हुई,
हाँ, विचार के कारण दुनिया पुरानी होती है। बात तो आई है नई दुनिया की स्थापना करने, ब्राह्मणों को सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश कराए फिर सारे विश्व की राजाई बच्चों को वर्षे में दे देते हैं। तुम जानते हो बाप से नए विश्व के मालिक पने का वर्षा मिलता है? ऐसे नहीं पुरानी बेविचारी दुनिया का वर्षा मिलता है। ये पुरानी विश्व तो कोई काम की नहीं है। मनुष्य समझते हैं अब तो स्वर्ग बनता जा रहा है, मेलमानियां बनते जा रहे हैं तो समझते हैं स्वर्ग बनता जा रहा है, परंतु ये सब है माया का भवका। सब चीज मुलमने की है, सोने की अर्थात सच्चाई की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ रही। मुलम्मा माना आर्टिफिशियल सोना, सब झूठ ही झूठ। सारा राज्य मुलम्मे का है, तो राजा भी मुलम्मे का होगा। यथा राजा तथा प्रजा। सारा राज्य रून के पानी मिसल है और मनुष्य इसी में खुश होते रहते हैं। आगे जब मुसलमानों का राज्य था तो ये एरोप्लेन मोटरें आगे थोड़े ही थी, बाबा की दुनिया कौन सी बताई जिसमें ये एरोप्लेन मोटरें रेलें बिजली का बबका ये सब निकल पड़ते हैं अंतिम 100 वर्षों में। ये सब माया का बबका है। कितने प्लेन्स बनाते हैं, प्लानिंग होती रहती है। बच्चे जानते हैं ये सब विनाश होने का है। अर्थक्वेक होगी, ये डैम सारे सब पानी ही पानी कर देंगे। डैम्स ने क्या किया है? पानी कई का जो ओरिजिनल धारा प्रवाह है उसको रोका गया और रोक करके उसको जैसे चाहा वैसे मोड़ दिया। तो जब अर्थक्वेक होगी तो जो धारा प्रवाह रोका गया है वो टूट पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञान का भी धारा प्रवाह है। ज्ञान की धारा जैसे ओरिजिनलिटी से बहनी चाहिए वैसे अगर नहीं बहने दी जाती और उसमें रोक लगाई जाती, मनुष्य अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर देश की सीमा और जाति की सीमा इसमें बंधे हुए होने के कारण अपने स्वार्थ की ओर उसको यूज करता है, विश्व कल्याण के लिए यूज नहीं होने देना चाहता, तो वो ज्ञान की धारा को भी रोक लगा देता। ब्राह्मण की दुनिया में भी ये सब सूचन हो रही है। नहीं तो धारा प्रवाह नेचुरल बहना चाहिए। लेकिन जब आती होगी मनुष्य की बुद्धि के द्वारा बनाए हुए प्लांट्स की, तो ये सब डैम शादी टूट पड़ेंगे। मनुष्य तो समझते हैं आगे चल करके इनसे बहुत सुख मिलेगा, भाखरा नंगल डैम आदि बनाए हुए हैं, ये टूटेंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। तो वास्तव में इन सबसे दुख ही मिलेगा। ये एरोप्लेन भी दुखदायी बन पड़ेंगे क्योंकि ये बम से उठाए के गिराएंगे। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़े बड़े ग्लानी के बम बनाए गए। और एरोप्लेन भी चैतन्य, जिसको बाबा कहते हैं आत्मारूपी रॉकेट, रॉकेट उड़ा और उसमें जो ग्लानी का बम्ब रखा हुआ है, जैसे वो बम्ब सूंघते हैं फटते हैं तो उसकी बदबू से सूंघते ही खलास हो जाते, तो ऐसे ही बड़े बड़े महारथियों की ग्लानी से भरे हुए ज्ञान के बम्ब जब फूटेंगे तो उन महारथियों के आधार पर जो चलने वाली पुरुषार्थ में जेंट्री है वो सब ज्ञान मार्ग में से टूट पड़ेंगे। बड़ा विनाश हो जाएगा। तो एरोप्लेन भी दुखदायी बने क्योंकि बम तो उठाए गिराएंगे, तो बच्चे ये सब बातें भूल जाते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया में दिल लग जाती है। जो बाप के आज्ञाकारी वफादार पूरे मददगार बच्चे बनते हैं और पक्के निश्चय बुद्धि है, वो तो जानते हैं कि कुछ भी हो जाए ये सब कोई नई बात नहीं है। क्या 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 बताया? नई बात नहीं। बैंस फट पड़े,
ग्लानी के बम्ब,
चाहे ग्लानी के बम्ब फट पड़े, चाहे अशुकेत हो जाए, धरती कंप हो जाए,
वो तो बता रहे हैं।
तो यही तो बता रहे हैं, आखिरी नुकसान तो होगा ही। वेस्टेज ऑफ टाइम मनी और एनर्जी तो होगा ही। तो जो निश्चय बुद्धि है वो तो जानते हैं कि कुछ भी हो जाए ये कोई नई बात नहीं है। ये तो अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश कैसे होगा? जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा वो सूक्ष्म बात है, वैसे स्थूल में भी पुरानी दुनिया का विनाश बाद में होगा। तो हम सूक्ष्म बुद्धि से सूक्ष्म विनाश की बात को हम पहले ही जान लेंगे, देख लेंगे कि स्थूल दुनिया का विनाश कैसे होने वाला है। यह है ज्ञान में से टूट जाने की बात। अनिश्चय बुद्धि विनाश चलती और निश्चय बुद्धि विजयंती। तो निश्चय बुद्धि जानते हैं अनेक बार पुरानी दुनिया का विनाश हुआ है तो अब भी जरूर होना है। वो बच्चे समझते हैं बहुत बहुत चीजें नई बन रही है, कौन से बच्चे, जो दुनियावी आत्माएं हैं, दुनियावी मनुष्य हैं, वो समझते हैं कि बहुत नई नई चीजें बन रही हैं, ये तो स्वर्ग बन रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ मेरे बच्चे ही जानते हैं कि ये तिलिस्म का खेल है। ये दुनिया में जो महलमाणियां अटारियां बनती जा रही हैं, ये सब तिलिस्म अर्थात जादू का खेल है। जैसे कोई पुराने सोने का रंग रूप लगाकर चमकदार बनाए देते, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप दे करके सब तरफ प्लेंस बनाते रहते। बाहर का रंग रूप दे दिया, अंदर से खोखला, खोखला माना पोला, अंदर कुछ भी नहीं है, ढोल ढोलम पोल, और बाहर से रूप आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। जैसे कोई वैश्या स्त्री हो भी विचारिणी, और बाहर से लिपस्टिक और आज की दुनिया भी जितने भी प्रसाधन के साधन हैं वो लगाए के ऐसे दिखाती है, क्या है ऐसी भरी पूरी नारी तो कोई नहीं होगी। तो वैसे इस पुरानी दुनिया को भी रंग रूप दे करके सब तरफ से प्लेंस बनाते रहते हैं। उनको ये पता नहीं है कि ये सब विनाश होना है। क्या ये जो ढोलम पोल वाली दुनिया है, पुरानी दुनिया है, वो सब खलास हो जाएगी, क्या बचेगी है? फिर बचेगी क्या? कुछ नहीं बचेगा, पवित्र नई दुनिया बचेगी। जो पवित्र होंगे वो बचेंगे, पवित्र का संगठन बचेगा और अपवित्र का संगठन खलास हो जाएगा। अपवित्र अर्थात व्यभिचारी, पवित्र अर्थात आप व्यभिचारी, नई दुनिया, नई दुनिया वो संगठन बचेगा। उनको ये पता नहीं है कि ये विनाश होना है। इस बात पर उनको निश्चय नहीं है कि ये पॉम्पोंड शो की जो इतनी बड़ी दुनिया बनाई जा रही है वो सब खलास होने वाली है। ये तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। यहाँ ये समझते हैं कि पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नई दुनिया भगवान आकर के स्थापन करेंगे। आकर के स्थापन करेंगे। पहले ब्रह्मा को रचेंगे, फिर उनसे मनुष्य सृष्टि पैदा होगी, क्योंकि ब्रह्मा से जो पैदाइश होती है वो भी मनुष्यों की होती है। ब्राह्मण भी मनुष्यों को ही कहा जाता है। तो लोग ऐसे समझते हैं क्योंकि शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। क्या क्या समझते हैं? कि पुरानी दुनिया विनाश होगी, फिर नए सिरे से ब्रह्मा सृष्टि रचेंगे। लेकिन ऐसे तो कुछ होता नहीं कि पुरानी दुनिया बिल्कुल खलास हो जाए या प्रलय हो जाए, फिर ब्रह्मा बैठ करके नई दुनिया रचे। तो पता नहीं है, ये सबका भी पता नहीं है कि ये कब होगा। ये सिर्फ तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। श्रीमत में भगवत गीता है ना, गीता है शास्त्र का नाम, जैसे क्राइस्ट का बाइबल, श्रीमत क्राइस्ट का बाइबल। तो बाप समझाते हैं, भगवान की है श्रीमत। अब श्रीमत जब कहा जाता है तो जरूर समझना चाहिए ये तो ऊंचे ऊंचे भगवान की मत है, श्रीमत ब्रह्मा की, बस श्रीमत विष्णु की नहीं कहते हैं। श्रीमत भगवान आकर के ब्रह्मा तन से कैसे देते हैं ये मनुष्य नहीं जानते क्या? श्रीमत ब्रह्मा की अथवा विष्णु की नहीं कहते हैं, शंकर का नाम क्यों नहीं लिया? शंकर का भी नाम ले लेते है, शंकर की श्रीमत थोड़े ही है। नहीं, मास्टर शंकर बनने न बनने की बात नहीं, यहाँ तो मत की बात है।
शंकर का तो विनाश के लिए मत बनाया गया
ब्रह्मा का नाम लिया, विष्णु का नाम लिया, शंकर का नाम नहीं लिया श्रीमत की बात करते समय। श्रीमत भगवान आकर के ब्रह्मा तन से कैसे मत देते हैं? आते कौन है? भगवान आकर के, और मत किसके द्वारा देते हैं? ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के तन से कैसे मत देते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। कौन से मनुष्य? बाहर की दुनिया के ही मनुष्य के, ब्राह्मणों की दुनिया के? ब्राह्मणों की दुनिया के तो जानते हैं कि ब्रह्मा के तन में शिव बाबा प्रवेश करता है, शिव बाप प्रवेश करता है और आकर के ज्ञान सुनाता है, वो श्रीमत है। श्रीमत सुनाए के चला जाता है ब्रह्मा के तन के द्वारा। फिर बाद में हम उस श्रीमत के आधार पर स्वर्ग बनाते रहेंगे। तो बाहर की दुनिया में वाले भी गलत फहमी में, और ब्राह्मणों की दुनिया वाले भी गलत फहमी में। तो समझ में आ गया कि ब्रह्मा और विष्णु की मत नहीं है, वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु का नाम लिया लेकिन शंकर का नाम नहीं लिया, क्यों? क्योंकि शंकर के ही मस्तक पर ब्रह्मा विराजमान है। मन कहते हैं तुम्हारी माँ बात सर माथे पर, या कहते हैं इसे को तो उसने सर पे चढ़ाए रखा है। तो सर पे चढ़ाने का मतलब क्या हुआ है? चंद्रमा को सर पे क्यों चढ़ाए रखा है?
बच्चे को
जो बहुत प्यारा बच्चा होता है तो बाप प्यार में आकर के उसको सर के ऊपर चढ़ाए लेते, कूल्हे पर भी नहीं, एकदम सर पर बैठाए लेते। तो ब्रह्मा तो शरीर छोड़ गए, सर पर कैसे बैठाया जाएगा है? वो ही ब्रह्मा ज्ञान चंद्रमा जरूर कोई में प्रवेश करता है, और वो ज्ञान चंद्रमा साकार में प्रवेश करके ब्रह्मा का प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है। ब्रह्मा मानो बड़ी मानो जगदम्बा, ब्रह्मा का ही नाम है जगदम्बा। वास्तव में ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है, ऐसा मुरली में बोला, क्योंकि ब्रह्मा की ही सोल
किसी कन्या में प्रवेश करके फिर जगदम्बा का पार्ट बजाती। तो श्रीमत ब्रह्मा की व विष्णु की नहीं कहते हैं, श्रीमत भगवान आकर के ब्रह्मा तन से कैसे देते हैं ये मनुष्य नहीं जानते। वो समझते नहीं है ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है। कौन? मनुष्य नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जो ऊपर है, ऊपर चला गया सूक्ष्म वतनवासी, वो सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फिर नीचे कैसे आता है। वो तो है सूक्ष्म वतनवासी, वो तो समझते हैं कि ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी है। अरे सूक्ष्म वतनवासी है लेकिन वो भी प्रवेश तो कर सकता है ना। तो इन बातों को न जानने के कारण कृष्ण का नाम ठोक दिया। अब कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस, उसकी तो बात ही नहीं है। ऐसे भी नहीं हो सकता कि कृष्ण का कोई साधारण रूप है। जिसमें परमात्मा प्रवेश करते हो, कृष्ण का कोई साधारण रूप थोड़ा ही होता है। कृष्ण तो इतना असाधारण सौंदर्यवान होता है कि कोई देखते ही झट फिदा हो जाए। ये बातें कोई जानती नहीं है। बाप कहते हैं हमारे भी बहुत गुरु किए हुए थे परंतु हमको पता कुछ भी नहीं था। भूले हुए थे कि श्रीमती किसकी है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो है निराकार है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और भ्रष्ट से भ्रष्ट है। ये कौन सी दुनिया की बात है? सूक्ष्म वतन की बात है, मूल वतन की बात है या साकारी वतन की बात है? जरूर साकारी वतन की बात है। श्रेष्ठ और भ्रष्ट यही इसी सृष्टि पर होते हैं। श्रेष्ठ और भ्रष्ट जब कहा जाएगा तो जरूर कोई साकारी रूप है जिनकी भेंट की जाती है। प्रैक्टिकल कोई पार्टधारी हैं जिनके पार्ट के आधार पर उनको श्रेष्ठ या भ्रष्ट कहा जाता है। सिर्फ बिंदु को नहीं श्रेष्ठ और भ्रष्ट कहा जा सकता। बिंदु बिंदु आत्माएं तो सब एक जैसी, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब 500 करोड़ मनुष्यों की आत्माएं भी ज्योति बिंदु, तो बिंदु बिंदु तो सब एक जैसे, उसमें श्रेष्ठ और भ्रष्ट का कैसे पता चलेगा? तो वो बिंदु आत्माएं जब शरीर में पार्ट बजाती है तो श्रेष्ठ और भ्रष्ट कहा जाता है। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है निराकार, अर्थात निराकार का मतलब ये नहीं बिंदु, निराकार का मतलब है जो निराकारी स्टेज में रहने वाला है। जैसे इतने धर्म हैं, बौद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इस्लाम धर्म है, और उनको फॉलो करने वाले ढेर फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन धर्मों में श्रेष्ठ कौन? धर्म स्थापक, उनकी स्टेज कैसी दिखाई गई? निराकार स्टेज दिखाई गई। कोई नहीं मानता हो तो उनका चित्र और जो फॉलोअर्स हैं उनके चित्र सामने रख दो। एक तरफ क्राइस्ट का चित्र रखो और दूसरी तरफ उनके फॉलोअर्स का चित्र रखो। एक तरफ महात्मा बुद्ध का चित्र रखो, दूसरी तरफ उनके जो बड़े से बड़े फॉलोअर्स कहे जाते हैं उनका चित्र रखो। तो चेहरा देखने से ही कोई पता लगा लेगा कि गुरु नानक, बुद्ध और क्राइस्ट, इनकी स्टेज कैसी निराकारी बनी हुई है। जैसे देह भान है ही नहीं, आत्मा जैसे ऊपर लटकी हुई है। इस देह और देह की धरणी से बिल्कुल परे की चीज दिखाई पड़ती है। तो वो तो है सिर्फ धर्म पिताएं, लेकिन उन बापों का भी कोई बाप भी है, तो वो है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ निराकार, उनकी ही श्रीमत है, श्रेष्ठ मत। एक तो वो और दूसरे उनकी मत, दो बातें हो गई। एक तो ऊंचते ऊंच भगवान और ऊंचते ऊंच भगवान की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत भगवत गीता, गीता हो गई श्रेष्ठ, उसकी रचना वह और उनकी श्रीमत भगवत गीता। तो वो गीता माता जो कही जाती है, माता कोई कागज की गीता माता होगी क्या? जरूर चैतन्य थी गीता, इसलिए मुरली में बोला है गीता तू सच्ची गीता है। अब जिस समय मुरली में बोला उस समय तो साउथ एक्सटेंशन की इंचार्ज गीता बहन सामने बैठी हुई थी ब्रह्मा बाबा के, तो लोगों की श्रद्धा बैठ गई किसके ऊपर? हाँ, साउथ एक्सटेंशन की इंचार्ज गीता के ऊपर। अब बाबा हद में बोलते हैं बेहद में? बाबा तो बेहद में बोलते हैं, ऐसे नहीं कि वो साउथ एक्सटेंशन के गीता और गोपाल, गीता और गीता माता के पति गोपाल, तो उनकी बात नहीं है। ये तो 16,000 गौएं हैं, जिन गौओं की पालना करने वाला गोपाल, गोपाल कन्हैया की श्रीमत शास्त्रों में गाई हुई है, वो कोई सतयुग का कृष्ण प्रिंस नहीं था, का टाइटल छोटे बच्चे का नहीं होता, बड़े को ही टाइटल दिया जाता है। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो है निराकार, उनकी ही श्रीमत है, क्योंकि शिवाय नमः कहते हैं ना, नमन किसको? शिव को नमन करते हैं, उनकी महिमा परम अपार है। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, ये सब बातें किसको बुद्धि में बिठाने में कितनी मेहनत लगती है। क्या सब बातें? कि भगवान कौन है और भगवान की गाई हुई माना, जिसकी महिमा भगवान ने भी गाई, भगवान ने किसकी महिमा गाई? गीता माता की महिमा गाई, भारत माता की महिमा गाई, जगदम्बा की महिमा गाई, मुरलियों में भी किसकी महिमा गाई है? जगदम्बा की महिमा गाई है। तो इन बातों की किसी की बुद्धि में बैठाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि जो नई दुनिया की फाउंडर है वो फाउंडर प्रायः लोप हो चुकी है, मन बुद्धि रूपी धरणी से उसका नाम निशान लोप हो गया, उसके महत्व का पता ही नहीं है लोगों को कि वो क्या चीज है जिसके द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन लगता है। इन बातों को बुद्धि में बिठाने में मेहनत लगती है, मेहनत माना हाँ, बार बार बताना पड़ता है कि ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, इसको मानो, लेकिन फिर भी मानते नहीं, अपने ही अहंकार में चूर हो जाते। अब भक्तों को भगवान की मत चाहिए, ये तो ड्रामा मनूद है। गीता के भगवान ने आकर भक्तों को मत दी है। दूसरा पेज तो भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। क्या भगवान सर्वव्यापी है? माना सबके दिलों दिमाग में एक जैसा बैठा हुआ है। परमात्मा सबके दिलों दिमाग में एक जैसा बैठ सकता है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर गीता पति भगवान है तो गीता की बुद्धि में वो ज्यादा बैठेगा या बच्चों की बुद्धि में ज्यादा बैठेगा? गीता है माता और गीता पति भगवान है पति, तो पति का कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन जास्ती से जास्ती किसके प्रति होगा? गीता माता के प्रति। भगवान जितना उस गीता माता के रोम रोम को जानता होगा उतना कोई बच्चा रोम रोम को नहीं जान सकता। तो भगवान आकर के परिचय देते हैं, बच्चे ये तुम्हारी माता है। तो पूछा भक्तों का उद्धार कैसे हो? भक्त फिर कह देते हैं भगवान सर्वव्यापी है। तो भगवान जब साकार में आएगा तो साकार में आने वाला एक साकार का आधार लेगा या अनेकों साकार व्यक्तियों का आधार लेगा? एक साकार माता का आधार लेगा। कोई कहे कि नहीं हमारा भी थोड़ा आधार ले लो। अरे हम भी तो कुछ हैं, तो वो ही बात हो जाएगी। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में हुआ, उन्होंने कहा हमारा भी जगत माता का टाइटल है, अखबारों में डलवाई दिया। क्या क्या डलवाई दिया उपाधि? वर्ल्ड मदर, कुमार का दादी। अरे ये वर्ल्ड मदर कुमार का दादी कहाँ से निकल पड़ी? अरे जब तुम ब्रह्मा को भगवान मानते हो तो ब्रह्मा के साथ सहयोगिनी सहचरी कौन थी? सहयोग देने वाली कौन थी सबसे जास्ती कन्या माताओं? जगदम्बा सरस्वती। तो उसका नाम जगदम्बा हुआ या तुम भी जगदम्बा हो गई, वर्ल्ड मदर हो गई? तो ये हुआ सौतिया डाह। उस सौतिया डाह ने क्या कर दिया? बाबा ने तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना की, तो हर सेंटर में मम्मा बाबा का चित्र लगाया जाता था। माया ने क्या किया? हाँ, मम्मा ने शरीर छोड़ा और उसके बाद मम्मा का चित्र हटाई दिया गया। अब सबकी पॉकेट में, जास्ती भक्तों की पॉकेट में पड़ा हुआ होगा दादी का चित्र, वर्ल्ड मदर का चित्र। अच्छा वो तो हुई आधार मूर्त आत्माओं की दुनिया, और उससे भी ऊंची एक और दुनिया है। आधार मूर्त आत्माएं तो हुई वो, लेकिन उनकी भी बीज रूप आत्माएं हैं, उनके भी बाप। उन बीज रूप आत्माओं की दुनिया में, एडवांस पार्टी की आत्माओं की दुनिया में सब तरह के बीज भरे हुए हैं। इस्लामियों के भी बीज है, तो बौद्धियों के भी बीज है, तो क्रिश्चियंस के भी बीज है, सबके बीज बैठे हुए। तो यहाँ जरूर कुमार का दादी के भी कोई बाप, बाप का पार्ट में उनकी भी अम्मा कोई होंगी, क्योंकि जब बीज हैं तो बीज में पावर ज्यादा होती है या जड़ों में पावर ज्यादा होती है? बीज में पावर ज्यादा होती है। तो भगवान कोई सर्वव्यापी नहीं हो सकता। भगवान सबका आधार लेकर के सबके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता, चाहे वो निराकार भगवान हो चाहे साकार भगवान हो। साकार भगवान होगा तो भी साकार रूप में नई दुनिया रचने के लिए जरूर एक साकार का आधार लेगा। तो समझते हैं सब भक्त भगवान ही है, तो सब भक्त कैसे भगवान हो जाएंगे? तो बताओ उनका क्या हाल होगा, किनों का, जो भगवान को सर्वव्यापी समझते हैं, सब का आधार लेने वाला समझते हैं। अब बाप बेट समझाते हैं कि भगवान तो एक है, वो आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। आने का मकसद क्या है? भक्तों की रक्षा करना। तुम सब हो भक्तियां, तो उन सीताओं की, उन भक्तियों की रक्षा करने वाला कौन? एक बाप, जिसे राम बाप भी कहा जाता है, राम भगवान। इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में है। मनुष्य एक भी ऐसा नहीं है जो रावण की शोक वाटिका में न हो। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा कर नहीं सकते। किसकी? शोक वाटिका में बैठी हुई सीताओं की, भक्तियों की। भक्तों की रक्षा भगवान को करनी है। किससे? माया रावण से। माया होती है ना, माया रूप, माया भी रूप धारण करके बैठती है। तो उनसे रक्षा करना, असुर असुरियों से रक्षा करना का काम भगवान का है। भक्त सब शोक वाटिका में रावण की जेल में हैं, सब पतित हैं। मनुष्य ये नहीं जानते कि हम पतित दुनिया नरक में निवास कर रहे हैं। पावन दुनिया तो स्वर्ग को कहा जाता है। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। कुछ भी समझाओ तो अपनी बात की लबार लगाते रहेंगे। जो बात समझाई जाएगी उस पर ध्यान नहीं देंगे, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई। क्या समझेंगे? भगवान जो बात समझाते हैं उस बात की गहराई को कोटों में कोई निकलेंगे पुरुषार्थ करने वाले, जो उस गहराई की बात को समझेंगे। कल पहले वाले सिकिल्ले बच्चे ही आवेंगे काय के लिए? जो बाप गीत गाते हैं, जो महिमा करते हैं, उस महिमा के महत्व को समझने के लिए कोई कोटों में कोई बच्चे हैं जो आते हैं। सिकील दे बच्चे, कल्प कल्प तुम सिकील दे बनते हो, फिर कोई तो पूरा बनते हैं सिकील दे, कोई को तो माया कच्चा खा जाती है। बाप को याद न करने से झट विकार आ जाते। पहला पहला विकार देह अहंकार आया तो फिर औरों को भी, औरों विकार, और विकारों की भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको अब वापस जाना है। या तो इस दुनिया में दुख ही दुख है, कलयुग की दुनिया का सुख काग विष्ठा के समान है, ये तो सन्यासी भी कहते हैं और तुम भी इस बात को समझते हो क्या? इस कलयुग की दुनिया में जो हम सुख लेंगे, जिस सुख के लिए मारा मारी लड़ाई झगड़ा होता है, वो सुख काग विष्ठा समान है। काग विष्ठा समान माने जैसे काग होता है कौआ, वो क्या खाता है? मनुष्य जो कुछ खाता है उसका खून बनता है। जो खाता है उसका खून तो मनुष्य के जिस्म में रह जाता है, और जो कचरा बचता है वो विष्ठा कहा जाता है। उस विष्ठा को कौन खाता? कौआ खाता है। और कौआ जो कुछ खाता है विष्ठा, उस विष्ठा में से भी निचोड़ा हुआ रस कौए के शरीर में रह जाता, और कचरे का भी कचरा कार्ड विष्ठा कही जाती। तो आज की दुनिया के सुख कैसे हैं? जो सुख थे वो तो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के सतोप्रधान पीरियड में सब भोग लिए गए। अब तो व्यभिचारी दुनिया रह गई। इस व्यभिचारी दुनिया में सुख का नाम निशान है नहीं। तो सन्यासी भी इस बात को मानते हैं असलियत को, और तुम बच्चे भी इस बात की असलियत को जानते हैं कि सुख काग विस्तर समान है इस दुनिया का, क्योंकि ये दुनिया है देह अभिमानियों की। देह और देह के संबंधों की जो दुनिया है उसमें जो सुख निकलेगा वो अल्पकाल का होगा। नरक और स्वर्ग तुम बच्चे जानते हो। नरक में तो कोई सुख नहीं। नरक में कोई से भी लागत लगाना अपना पद भ्रष्ट करना है। क्या कहा? इस नरक की दुनिया में कोई से भी लागत लगाना, कोई माने कौन है? एक्स वाई जेड कोई, कोई में कौन कौन आ गया है? कोई में कौन कौन आ गया? 500 करोड़ सभी आ गए है? हाँ सभी आ गए ना, कोई ऐसा बचा तो नहीं जो ना आ गया हो। एक्स वाई जेड सब आ गए ना, फर्स्ट से लास्ट तक 500 करोड़ विमर्श मनुष्य आत्मा तक सब उसमें आ गए ना, उस लिस्ट में। प्रजापिता भी उस लिस्ट में आ गया ना, कि प्रजापिता से लागत लगानी है, है? प्रजापिता से लगाव लगाना है या प्रजापिता के तन में उस रथ में जो सुप्रीम सोल आया हुआ है उससे लागत लगानी है? हाँ, सबसे लागत लगाई तो मुर्दे से प्रीति करने से कुछ नहीं मिलेगा। वो तो मुर्दा है, खाक हुआ, भस्म रमाई हुई दिखाते हैं। भस्म का अर्थ क्या है? जैसे वो साधु सन्यासी तो स्थूल भस्म रमाई लेते हैं, उसका अर्थ क्या है? कि उसने तो ईश्वरीय सेवा में पहले ही अपने को भस्म किया हुआ है, जीते जी मर चुका, मुर्दा हो गया, देह और देह की पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया के संबंधों से, उससे अगर कोई प्रीत जुटाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? कुछ प्राप्ति होगी? कुछ प्राप्ति नहीं होगी। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से जैसे उपराम रहेंगे, क्योंकि पहले पहले देह अभिमान आने से ही उनके साथ दिल लगती है। देही अभिमानी फिर इस पुरानी दुनिया से उपराम रहेंगे, वो होता है हद का वैराग्य, और ये है बेहद का वैराग्य। तो हम इस दुनिया को भूलते हैं, ये बिल्कुल ही दुख देने वाले हैं। कौन? इस दुनिया के देह और देह के संबंध है, इनसे बाकी थोड़ा सा काम लेना है। क्या है जी? नहीं, थोड़ा सा काम क्या लेना है तो पुराने शरीर, लेकिन पुराने शरीरों से भी पुरुषार्थ करके थोड़ा सा काम लेना है। ये पुरानी दुनिया तो अब गई की गई, बाकी दो घड़ी के हम मेहमान हैं। तो ब्राह्मण ही कहते हैं कि हम पुरानी दुनिया के दो घड़ी के मेहमान हैं, हम अपने स्वीट होम राजधानी में आकर के सुख भोगेंगे, अब हमको जाना है। ये पुरानी दुनिया कब्रस्तान होनी है। कौन सा स्थान होनी है? कब्र का स्थान। मुर्दे जहाँ गाड़े जाते हैं, मुर्दा कहाँ गाड़ा जाएगा? कब्र में क्या होता है? मिट्टी ही मिट्टी होती है। तो मुर्दा जिसमें से आत्मा निकल गई, मन बुद्धि रूपी आत्मा किसको समर्पित हो गई? परमात्मा बाप के प्रति समर्पित हो गई। तो रह क्या गया? शव। तो शव को याद करना है या शिव को याद करना है? इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिर्फ बिंदु को याद करना है, वो बिंदु भी जैसे शंकराचार्य के लिए कहते हैं कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था और राजा के सब में प्रवेश कर लिया था, तो राजा के सब के द्वारा कार्य किया ना, तो ऐसे ही परमात्मा भी जिसमें आता है वो तन भी क्या हुआ है, वो तन हो गया सब। अगर उससे लागत लगाई तो जैसे मुर्दे से लागत लगाई जाती है कोई प्राप्ति नहीं होती, ऐसे ही रिजल्ट होगा। सब को याद नहीं करना है, किसको याद करना है, शिव को याद करना है। ये पुरानी दुनिया कब्र स्थान होनी है, कब्र में जैसे मुर्दे गाढ़े जाते हैं, क्योंकि कब्र में मिट्टी ही मिट्टी होती है, तो उस देह अभिमानी की मिट्टी में मुर्दा गाड़ दिया जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिलाई दी जाती है। जैसे नेहरू जी की मिट्टी को क्या किया है, उनकी राख को चारों तरफ भारतवर्ष में फैला दिया। अब वो तो झूठ बात है, दुनिया तो भगवान के चरणों की रज भी माथे से लगाती है, तो बात यहाँ की है। इसलिए देह सहित ये सब कुछ भूल जाना है, ये शरीर तो पुरानी जूती है, इसको अब छोड़ना है, योग में रहना है, योग में रहने से आयु बढ़ेगी। तो हम बाप से वर्षा लेंगे, देह अभिमानी की आयु बढ़ नहीं सकती, उनका देह से प्यार हो जाता है। कोई का शरीर अच्छा है तो देह से प्यार होता है, बड़ी अच्छी रीति मिलते रहेंगे, काय से है देह से मिलते रहेंगे। जैसे बर्तन मले जाते हैं ना, बर्तन मले जाते ना ऐसे ऐसे करके, तो ऐसे मिलते रहेंगे। तो ये अच्छी बात हुई खराब बात हुई, ये तो मुर्दे से प्रीति करना हो गया। जितना तुम योग बल में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बनेगी। क्या बर्तन लेने के लिए हम शरीर को भूल, कितना भी साबुन, क्या नया बर्तन लेने के लिए हम शरीर को भूल कितना भी साबुन वैसलीन पाउडर आदि लगाएं, फिर भी शरीर तो पुराना है। पुराने मकान को कितनी भी मरम्मत करो तो भी जैसे खंडहर ही खंडहर रहेगा, तो शरीर भी आज के खंडहर मिसल हो चुके हैं। तो अपने से बैठ ऐसी बातें करेंगे तब बाप और वर्षे से दिल लगेगी, और कोई चीज से दिल नहीं लगानी। मैं आता हूँ बाप के पास जाने वाला, हाँ मैं आत्मा हूँ बाप के पास ले जाने वाली हूँ, और खुद भी बाप के पास जाने वाली हूँ। बाप को याद करने से फायदा होता रहता है, आयु बढ़ती है, आत्मा समझती है मैं योग बल से प्योर होती जाती हूँ, ये मेरा शरीर कोई काम का नहीं है। बल सन्यासी पवित्र रहते हैं परंतु शरीर तो फिर भी पतित है ना, यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, सन्यासियों का भी शुद्ध नहीं हो सकता, तो गृहस्थियों का भी शुद्ध नहीं हो सकता। वहां तो शरीर विष से नहीं बनते हैं, और यहाँ शरीर विष से बनते हैं, ये बातें तुम बच्चे जानते हो। देखो मानो बेविचार, पराई स्त्री का सेवन, पर पुरुष का सेवन, ये क्या हुआ, विख हुआ। अगर स्वर्ग में भी विख से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते, बात आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। इस समय पांच तत्व भी आयरन एज हैं, तो शरीर भी ऐसे मिलते हैं। कैसे? आयरन एज बीमारी आदि हो जाती है, वहां कभी शरीर बीमार हो नहीं सकता। तो ये सब समझने की बातें हैं। क्या है? जैसे कराची में शूटिंग हुई, कराची में ढेर की ढेर दवाइयां देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, चीड़ फाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वहां हो रही थी स्वर्ग की शूटिंग। पाक स्थान वो शूटिंग हुई, वो तो एक छोटा सा सैंपल बना के दिखाया। और आज पुरुषार्थियों का क्या हाल है? बिना हॉस्पिटल के, बिना दवाइयों के ये शरीर चल ही नहीं सकते। तो नरक और स्वर्ग में ये अंतर है। संगमी की दुनिया का भी वो स्वर्ग अब आने वाला है। जो आदि में हुआ सो सब अंत में विस्तार रूप में होने वाला है। तो वहां स्वर्ग में कभी शरीर बीमार हो नहीं सकता, वहां तुम्हारे शरीर भी नहीं बनते, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है। वहां ये दवाइयां आदि कुछ नहीं होती, शरीर चमकता हुआ रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो लोहे की बन गई, तो वंडर है ना, काया कैसे बदलती है। अभी काया काये की बन गई है, लोहे की। स्टील क्या होता है? है? स्टील भी लोहा होता है। स्टील को तेज अग्नि में डाल दो तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो लोहे के शरीर जब तीव्र योगाग्नि में डाले जाएं, तो विषय विकारी जो होंगे लोहे के, वो तो अलग दिखाई पड़ेंगे, और सोने के अलग दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि लोहा जितना तपाया जाएगा वो काला का काला ही रहेगा, और सोना जितना तपाया जाएगा वो निखार आएगा और ही तप करके बढ़िया बन जाएगा देखने में। अभी तो लोहे की काया है, तो ये काया कैसे बदलती है? कोई पालिश तो नहीं की जाती है। जैसे आज की दुनिया में लोहे में पालिश हो जाती है तो स्टील बन जाता है, चांदी जैसा देखने में आता है बर्तन। काया तो एकदम बन जाएगी, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सोने के शरीर तो नहीं होते हैं, नाम है ना, लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ पारसनाथ नहीं कहते, क्या पारस पत्थर क्यों कहते हैं? कि जो उनके संसर्ग संपर्क में आए वही चेंज हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता कि जो लक्ष्मी नारायण से संसार में बन करके प्रत्यक्ष होंगे, गुप्त की बात नहीं, प्रत्यक्ष होने की बात है। तो प्रत्यक्ष होने के बाद कोई उनके संसर्ग संपर्क में पहुंचे और चेंज न हो, ये नहीं हो सकता। उनके शरीर देखो कितने सतो प्रधान है, कितना खींचते हैं, उनकी कितनी महिमा है। अभी तो ये पांच तत्व भी तमो प्रधान है। विक से शरीर पैदा होते हैं और वहां होती है योग बल की बात। कहां? सतीगुण। स्वर्ग में जरूर वायसलेस बच्चे होंगे। तीसरा पेज, काम महाशत्रु वहां होता नहीं, बाप कहते हैं ये काम तुमको आदि मध्यंत दुख देने वाला है। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया और इसको संपूर्ण विकारी दुनिया कहा जाता है। तो हर एक के अंदर ये पांच भूत हैं, पांच भूतों पर विजय तब पाते हैं जब सर्वशक्तिमान से शक्ति का वर्षा मिलता है। सन्यासियों को तो ये वर्षा मिल नहीं सकता। क्या कौन सा वर्षा? शक्तियों का वर्षा। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो, जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो तुम हो इनकॉग्निटो शिव शक्ति सेना। सेना शिव बाबा से योग लगा करके शक्ति ले रही है। वो सर्वशक्तिमान बाप है ईश्वर की राजधानी स्थापन करने वाला। किससे शक्ति ले रही है? आत्मा है? ऐसे सर्वशक्तिमान बाप से जो स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला है। ऐसा बाप नहीं जो सिर्फ पढ़ाई के चला जाए और शरीर छूट जाए। वो बाप कैसा बताया? राजधानी स्थापन करने वाला बाप, जो काम और धर्म पिताओं ने नहीं किया। क्या काम? वो धर्म पिता आए सिर्फ अपनी धर्म की स्थापना करके चले गए। ब्रह्मा ने भी ब्राह्मण धर्म की स्थापना की, लेकिन राजधानी ब्राह्मणों की नहीं तैयार हो सकी। वो प्रवृत्ति मार्ग की राजधानी चाहिए। तो सर्वशक्तिवान बाप वो है स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाला। वो आते ही है तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। अभी तुम स्वर्ग के लायक नहीं हो। मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी करने के लायक बनाता हूं। अभी तुम हो नरक के मालिक। कल होंगे स्वर्ग के मालिक और अभी हो नरक के मालिक। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं है। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वर्ग तो सत्यों को कहा जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये गलत फहमी चल रही है। उनसे पूछो कि तुम्हारा भगवान बाप जिसको तुम ब्रह्मा का रूप देते हो वो क्या करके गया? क्या स्वर्ग स्थापन करके गया? तो कहेंगे चलो माउंट आबू देखो, हमारा सुखधाम देखो, हमारा शांति धाम। तो वो नमूना दिखाए देंगे। अब ऐसे नमूने तो उस दुनिया में भी बनाए हैं। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है, तो उसको कोई असली स्वर्ग नहीं कहा जाता। असली स्वर्ग जहाँ होगा वहाँ कोई भी प्रकार की बीमारी हो नहीं सकती। आत्मा की भी बीमारी नहीं होगी जो माया का प्रकोप हो। निश्चय बुद्धि विजयंती की स्टेज में होंगे और शरीर की भी बीमारी नहीं होगी। तो स्वर्ग तो सत्यों को कहा जाता है। कलयुग में थोड़े ही स्वर्ग होता है, उसका नाम ही है कलयुग। कल है कलेश का युग। बाप ने समझाया ये है विकारी दुनिया। हर एक नारी